अच्छा दो सिचुएशन है गोबर के लेपे होने वाली जमीन पर, कि एक है कि थोड़ा फ्रेश हो तो उस पर तो नमाज नहीं है, एक है कि वो सूख गई है, गोबर सूख गया है, अब उस पर गीला कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ रहा है तो हो जाएगी, लेकिन वही बात कि इतना गीला ना हो कि उसका असर वो कपड़े अपने अंदर ले ले, ऐसा ना हो, तो ये असूल जहन में रखें। तो इसमें वो चीज भी आंसर हो जाती है कि होटल में या किसी ऐसी जगह पे जाए जिसका पता नहीं है कालीन पाक है या ना पाक, हो सकता है कभी किसी बच्चे ने वहां पेशाब कर दिया हो, तो अब वॉशरूम से वजू करके निकला तो कारपेट होने की वजह से जूता कई बार नहीं होता, तो पांव अगर बहुत गीला नहीं है, एक है कि पानी नुचड़ रहा हो पांव से, नहीं मामूली गीला है जिसका वजू के बाद आमतौर पर होता है, पांव रखा कारपेट पे तो बस हल्का सा निशान कारपेट पे बन गया, बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, पांव पाक ही रहता है, लेकिन उसमें भी एहतियात लोग करते हैं, यानी कि जो सुलहा को यही देखा कि वो कोई टावल वगैरह या कोई चीज से पांव खुश कर लेते हैं पहले, फिर उस कारपेट के ऊपर पांव रखते हैं। चौथा तरीका पाक करने का, जलाना या आग पर पकाना, तो एक तरीका जिक्र हुआ धोना, दूसरा हुआ पोंछना, और तीसरा हुआ खुश्क होकर निजासत का असर बाकी ना रहना, तो इससे पाक हो गया। अब चौथा है कि जला कर या आग पर पकाकर, तो नजस चाकू छुरी या मट्टी और तांबे वगैरह के बर्तन अगर दहकती हुई आग में डाल दिए जाए तो भी पाक हो जाते हैं, तो ऊपर जिक्र हुआ था कि ये पोंछ लेने से पाक हो जाते भी हो जाते हैं, पाक धो भी सकता है पोंछ भी सकता है, और तीसरा अब ये है कि जला के यानी आग पे उसको अगर डाल दे तो उससे भी पाक हो जाता। गोबर के उपले लीद वगैरह नजस चीजों की राख पाक है और उनका धुआं भी पाक है, रोटी में लग जाए तो कुछ हर्ज नहीं, तो अगर तंदूर में गोबर वगैरह से आग जलाई जाए तो उनकी राख भी पाक है उनका धुआं भी पाक है, तो उससे परेशान ना हो, वो पाक रहती है चीज। नजस मिट्टी से बने हुए बर्तन जब तक पकाए नहीं जाएंगे ना पाक रहेंगे, और जब पका लिए जाएंगे तो पाक हो जाएंगे, तो अगर मिट्टी के बर्तन है वो नजस मिट्टी थी तो जब तक आग में उन्हें पकाया नहीं जाएगा तो वो नापाक रहते हैं, जब आग में पक जाते हैं तो पाक हो जाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते भी ओवर कॉन्शियस ना हो कि पता नहीं नापाक मिट्टी थी या पाक मिट्टी थी, अगर तो पका लिया गया है उनको आग के अंदर तो पाक हो गए। फिर है कि शहद शीरा घी या तेल नापाक हो जाए तो जितना तेल वगैरह हो उतना या उससे ज्यादा पानी डालकर पका लिया जाए, जब पानी जल जाए तो फिर पानी डालकर जलाए, इसी तरह तीन दफा करने से तेल वगैरह पाक हो जाएगा, या इस तरह किया जाए कि जितना घी तेल हो उतना ही पानी डालकर हिला लें, जब तेल वगैरह पानी के ऊपर आ जाए तो किसी तरह उठा लें, इसी तरह तीन दफा पानी मिलाकर उठा लें तो पाक हो जाएगा, और अगर घी जम गया हो तो पानी डालकर आग पर रख दें, जब पिघल जाए तो उसको निकाल लें। अब ये मसला है कि थिक चीज है, मिसाल के तौर पर तेल है जिसमें शहद है, उसको कैसे पाक किया जाए, अगर वो नापाक हो जाए उसके अंदर कोई नापाक चीज गिर गई और वो नापाक हो गया, उसको कैसे पाक कर, उसका ये बताया जा रहा है, उसका जिक्र हुआ, उसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि उसमें पानी डाला जाए जितने वो क्वांटिटी, उससे ज्यादा क्वांटिटी पानी डाल के उसे पकाया जाए और पानी इवेपरेट करे, पानी इवेपरेट हो गया तो ये एक बार पानी से वो गुजर गया, फिर पानी डाले फिर वेपरेट करे पानी, फिर पानी डाले फिर वेपरेट करे, तीन बार करेगा तो अब वो चीज तेल वगैरह पाक होगा। अगर ये नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये अवेलेबल है कि पानी डाले और जब तेल वगैरह ऊपर आ जाए तो उस तेल को अलहदा करे, फिर पानी डाले फिर तेल ऊपर आ जाए फिर अलहदा करे, फिर पानी डाले फिर तेल ऊपर आ जाए फिर तेल अलहदा करे, तो इस तरह वो पाक होगा, यानी इस सारी एफर्ट से गुजरना पड़ेगा उस चीज को पाक करने के। तनूर अगर नापाक हो जाए तो इसमें आग जलाने से पाक हो जाएगा, बशर्ते गर्म होने के बाद निजासत का असर ना रहे, तो अगर तनूर वगैरह जिसमें रोटी वगैरह पकाई जाती है वो नापाक हो जाए तो आग जलाने से पाक हो जाता है लेकिन निजासत का असर नहीं रहना चाहिए। तो ये चौथी तरीका था किसी चीज का पाक होने का, पानी से पाक करना, पोंछ कर पाक करना, फिर खुश्क होकर पाक हो जाना, जलाकर पाक करना। अब पांचवी तरीका यह है कि उस चीज की माहियत ही बदल जाए, एंटिटी बदल जाए, जैसे नापाक तेल या चर्बी का साबुन बना लिया जाए तो पाक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल मसला है कि इम्पोर्टेड साबुन अगर इस्तेमाल करना हो, उसमें एनिमल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो और वो उस मोस्ट प्रोबेबल सुअर के हो, तो क्या वो साबुन इस्तेमाल किया जाए कि नहीं। तो उस पर यही है कि वो पाक है, किया जा सकता है, क्योंकि ये मसला ऊपर जिक्र कर दिया गया, गुजर गया कि सुअर कुल्ली तौर पे नापाक है, नजासत गलीजा है। तो अब सवाल था कि जिस उससे अगर साबुन बना हुआ है, उसका फैट यूज हुआ है या कोई चीज यूज हुई है, तो क्या वो पाक है साबुन। तो उसका आंसर ये है कि वो पाक, यानी साबुन भी पाक है, साबुन से धोना भी पाक सही है, उसमें उसका इस्तेमाल सही है। उसकी रीजन ये है कि वो एंटिटी बदल चुकी है और माहियत बदल गई और वो पाक हो। अब छठा तरीका पाक करने का है कि खुरच कर, रगड़ कर पाक करना। जूते और चमड़े के मोजे में अगर जिस्मदार नजासत लग कर खुश्क हो जाए, जैसे गोबर, पखाना, खून, मनी वगैरह, तो जमीन पर खूब रगड़ कर नजासत जायल कर देने से पाक हो जाता है। ऐसे ही खुरचने से भी पाक हो जाता है। और अगर सूखी ना हो तब भी अगर इतना रगड़ दे कि नजासत का नामो निशान बाकी ना रहे तो भी पाक हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, धोना भी एक तरीका है जो जिक्र हो गया, पोंछना भी एक तरीका है जो जिक्र हो गया, इसी तरह रगड़ना भी एक तरीका है। जूते या चमड़े के मोजे वगैरह होते हैं, उन पे कोई नजर आने वाली चीज लग जाए, यानी लिक्विड ना हो, पेशाब वगैरह ना हो, बल्कि कोई नजर आने वाली चीज हो, जिस्मदार कोई चीज हो, तो उसकी ये बात हो रही है कि खूब रगड़ कर या खुरच कर भी वो पाक हो जाता है, कि उसका असर बाकी ना रहे। तो ये 6 तरीके थे किसी चीज को पाक करने का। तो अब निजासत का जिक्र हुआ, गलीजा क्या है, खफीफा क्या है। गलीजा में हमने जिक्र कर दिया जो मोस्ट प्रॉब्ली जो डील करता है कि इंसान के जिस्म से निकलने वाली चीजें, पखाना, पेशाब, खून, मनी, ये गलीजा है। अब उनको पाक करने का, उस कपड़े या जगह को या जिस्म को क्या तरीका है, उसका ये तस्करा गुजार, 6 तरीके हैं पाक करने के। अब इसी से रिलेटेड मुतफर्रिक मसाइल, डिफरेंट मसाइल। एक ये कि नापाक जमीन पर मिट्टी वगैरह डालकर नजासत इस तरह छुपा दी जाए कि नजासत की बू ना आए, तो मिट्टी का ऊपर का हिस्सा पाक है, तो दबा देना उस चीज को। पोन था, खोदा, पोन को अंदर और यानी गड्ढे के अंदर पोन चला गया, ऊपर मिट्टी डाल दी, ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, तो ऊपर की मिट्टी पाक है, यानी उस पर नमाज पढ़ी जा सकती। इसी तरह बिछोने का एक कोना नजस है और बाकी सब पाक है, तो पाक होने पर नमाज पढ़ना दुरुस्त है। कोई बिछोना है, चादर है, चटाई है वगैरह, एक तरफ नापाकी है, मिसाल के तौर पर बच्चे ने पेशाब एक कोने पे उसका असर है या उसने एक कोने पे किया, तो बाकी पाक है, उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। नजस बिछोने पर सोया और पसीना से वो कपड़ा नम हो गया, इसका भी यही हुक्म है कि उसका कपड़ा और बदन नापाक ना होगा, अलबत्त अगर इतना भीग जाए कि बिछोने में से कुछ निजासत निकल के बदन या कपड़े को लग जाए तो नजस हो जाएगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल मसला है कि सोने वाली जगह नापाक है, जहां सोया हुआ है, जहां बैठा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कहीं बैठा सफर पे था और सोफा वगैरह पड़ा, बैठ गया, अब पता नहीं पाक है नापाक है, क्योंकि मल्टीपल लोग जाते हैं, बच्चे ने नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पानी मतलब कि एब्जॉर्ब हो गया कपड़े या जिस्म पे, या जिस्म और कपड़े से उस पे बैठने वाली या सोने वाली जगह पे, बिस्तर पे, तो फिर वो नापाक हो जाता है। कुत्ते ने आटे में मुंह डाल दिया या बंदर ने झूठा कर दिया, तो अगर आटा गंदा हुआ हो तो जहां मुंह डाला है वहां से उतना निकाल लें, बाकी का खाना दुरुस्त है। और अगर आटा खुश्क हो तो जहां जहां उसके मुंह का लुआब लगा हो वहां से उतना निकाल लें, बाकी सब पाक है। तो ये तस्करा आएगा आगे भी कि कुत्ते की जो है जो लुआब होता है, थूक होता है, वो नापाक होता है, बाकी कुत्ता नापाक नहीं होता। कुत्ते का जो होता है ना लुआब, उसका थूक जो है तो वो नापाक होता है। तो उसके मुतालिक है कि अगर उसने किसी बर्तन में डाला, उसमें आटा पड़ा था और आटा बंधा हुआ था, गुंदा हुआ था, तो उसके मुतालिक ये है कि जहां पे उसने मुंह लगाया वो उस हिस्से को निकाल दे, बाकी पाक है। और अगर खुश्क है तो खुश्क जहां जहां उसका लुआब लगा उसको निकाल दे, बाकी आटा पाक है।